الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایمان اور کفر قرآن مجید کی روشنی میں سے پڑھتے ہیں. تو اس میں اب ہم نے جو سلسلہ پچھلے جمعے کو شروع کیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ صرف بدھ کی کلاس میں نہیں پڑھا کریں گے، بلکہ جمعے کا درس بھی اسی کتاب میں سے ہوا کرے گا، اور اس کی وجہ بھی بتائی تھی. تو جمعے کے بیان میں تو ہم سوال جواب نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ ایسی ترتیب نہیں ہوتی ہے، لیکن کلاس میں تو کر سکتے ہیں نا. تو کلاس میں ہم آپ سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کیا وجہ بتائی تھی کہ جمعے کے بیان میں بھی یہی کتاب پڑھیں گے بجائے اس کے کہ کوئی اور کتاب پڑھنے کے. مکارم اخلاق الحمدللہ حضرت کی مکمل ہو گئی، پیچھے بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھ کے مکمل کری ہیں جمعے کے درس میں، اب جو ہے وہ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا بتائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ ارجنسی، اٹ از ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ تو یہ ویسے بھی تھا، لیکن ارجنسی، ارجنسی یعنی اس کی جو ہے نا وہ بہت یعنی جلد ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اس کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے جلدی، ارجنسی کیوں آ گئی ہے؟ وقت کم ہے اور اس کی تعلیم کی لوگوں کو بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو وہی ارجنسی والی بات ہو گئی. بیکاز اٹ از لیونگ، کیا مطلب میرے پاس اٹ از لیونگ، جا رہا ہے فرام معاشرہ. عقائد از ان ڈینجر، ایمان کا فتنہ بڑھ گیا ہے. ہاں وہ تو ایمان کا فتنہ بڑھ گیا ہے، لیکن اس حاجز نے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایک لفظ جو ہے نا وہ اگر کوئی بتا دے، ایک لفظ استعمال کیا تھا خاص، ٹھیک ہے کہ نہیں گوریلا وار ہر جگہ تو نہیں پٹ ہو سکتی نا، ٹھیک ہے گوریلا وار تو ہو ہی رہی ہے، ایمان کی کا فتنہ بھی ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں تو ہو چکی ہیں. جمعے کے درس میں کون سی بات کری تھی جس کی وجہ سے کہ آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنے کی بجائے دو دفعہ پڑھ، ٹھیک ہے، اور جلدی کر رہے ہیں اس کو، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ نہیں آ رہا کسی وجہ. چلیں کوئی بات نہیں، جمعے میں تو ویسے بھی وہ لکھنے کاپی پنسل والا سلسلہ نہیں ہوتا، حالانکہ جو لوگ آن لائن سن رہے ہوتے ہیں تو وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے آرام سے نوٹس لے سکتے ہیں، تو لے لیا کریں. جمعے میں بھی اب تھوڑا سا اہتمام اگر شروع کریں کہ سامنے کتاب ہو اور کچھ لکھنے کے لیے کاغذ قلم پنسل وغیرہ بھی ساتھ ہو. تو اس آرڈرز نے یہ کہا تھا کہ امت کے اندر عقائد کی اہمیت، عقائد کی اہمیت خطرناک حد تک کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، خطرناک حد تک کم ہو رہی ہے بلکہ ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ کم ہو رہی اور ختم ہو رہی، اس کی کچھ تفصیل بیان کری تھی کہ کم کہاں پہ ہو رہی ہے اور ختم کہاں پہ ہو رہی ہے، یا کہ ختم ہو چکی ہے بلکہ. کیا لکھا انہوں نے؟ آج کل عقائد کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کہاں سے جوڑ دیا دو باتوں سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کہاں پہ ہے بھائی، اس کا کیا تعلق؟ عقائد کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ ایک دوسرے کانٹیکس میں استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو ختم جو ہے وہ عوام میں ہو چکی ہے، بہت پہلے سے ختم ہو چکی ہے. اصل میں عوام کو تو ایبسلیوٹلی پتہ ہی نہیں کہ لفظ عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے، لفظ عقیدے کا مطلب ہی نہیں پتا عوام کو تو، ٹھیک ہے نا، اور کانسیپٹ ہی نہیں پتا کہ اس کا کیا کیا اس کی ریلیونس ہے ہمارے دین کے ساتھ اس لفظ عقیدے کی، ٹھیک ہے. تو عوام میں تو یہ ختم ہو نہیں رہی ہے، ختم ہو چکی ہے، بہت پرانی ختم ہو چکی ہے. اب تو کچھ لوگوں کی محنت سے جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. और कम कहाँ पे हो रही है? उलमा में बहुत कम, इवन उलमा में बहुत ज्यादा कम हो रही है, ठीक है। और नाम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? वर्ल्ड इवेंट्स का, कि वर्ल्ड इवेंट्स ऐसे हैं इस वजह से अकीदे की बात मत करो, राइट। वर्ल्ड इवेंट्स और अकीदा, ठीक है। हमें ईमान और कुफर की डेफिनेशन ही नहीं पता, अकीदे का मतलब भी कुछ नहीं पता, तो इस वजह से ना ये अर्जेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। और जिन लोगों को थोड़ा एहसास है इस बात का, वो समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल जा रहा है, कितना ज्यादा बुरा जा रहा है इसका। बहरहाल नतारा मेहरबानी फरमाए। अच्छा एक बात जो है, वो पिछली बुध की क्लास से, कि जिसके अंदर हमने, नहीं बुध बुध की नहीं, जुमे की क्लास के अंदर हमने आखिरी जो उनवान पढ़ा था वो था फायदा मुतअल्लिका खत्मे नबुवत। खत्मे नबुवत से जो है ना, वो इस टॉपिक के जो है वो क्या बड़ा क्लोज रेलिवेंस बनती है, वो ये बनती है कि खत्मे नबुवत के अकीदे के ऊपर जो डाका डालने वाले आते हैं ना, वो कभी भी काफिर की शक्ल में नहीं आते, कभी भी काफिर की शक्ल में नहीं आते। कि किसी ईसाई ने जो है ना वो आखिरी नबी होने का दावा कर दिया, कभी सुना है आपने? ना सुना है ना आगे सुनेंगे। कि किसी यहूदी ने जो है वो नबुवत का दावा कर दिया, राइट, या किसी हिंदू ने जो है ना वो ईसा अलैहि सलाम होने का दावा कर दिया या नबुवत का दावा कर दिया, कभी सुना है ना? कभी सुनेंगे। तो ये खत्मे नबुवत के ऊपर जब भी हमला हुआ है, ये मुनाफिकों ने हमला किया है, जो ऊपर से अपने आप को मुसलमान कहते हैं या दिखाते भी हैं अपने आप को मुसलमान। हमेशा खत्मे नबुवत का मसला जो है वो अंदर से निकला है, मुसलमानों के अंदर से निकला है, जो आस्तीन के सांप होते हैं, ठीक है। तो कादियानी हो या कोई और हो, अब हम जो है वो कादियानी तो है भाई, वो खत्म नबूवत का डाकू, और उसने जो है वो बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी करी बरसगीर के अंदर खास तौर पर, और अफ्रीका के अंदर भी कादियानियत की बहुत ज्यादा तरवीज होती है वगैरह वगैरह। और फिर उनको जो है वो कनाडा की पुष्पनाई हासिल होती है, यूके की पुष्पनाई हासिल होती है, अमेरिका भी जो है वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन कादियानी वाहिद खत्म नबूवत का डाकू तो नहीं है ना, कि बस जो है वो खत्म नबूवत का मसला जो है कादियानियों से ही शुरू होता है और कादियानियों पर ही खत्म हो जाता है बस, और कोई नहीं है खत्म नबूवत के उसके ऊपर जो है वो हमला करने वाले, और कोई दूसरा रास्ता नहीं इख्तियार करते ये लोग। बेशुमार रास्ते हैं, आजकल तो नए नए नाम जो है वो आ भी रहेंगे, ये शकील बिन हनीफ इंडिया के अंदर, और भी इस तरह के और भी नाम है जो मुझे अब याद भी नहीं रहता, इतने सारे नाम आते रहते हैं इस तरह के ना, ठीक है। और फिर खत्म नबूवत के ऊपर यानी जो जर्ब लगाने वाले हैं, वो फिर और शक्लों के अंदर भी तो आते हैं ना। आप मुसलमानों का अकीदे की तरफ से जब जब तवज्जो कम हो जाएगी, जब मुसलमानों के नजदीक अकीदे की अहमियत कम हो जाएगी, तो फिर अगला जो दावेदार आएगा झूठा नबी होने का, तो मुसलमानों के भाई इतना अच्छा बंदा तो है, मुसलमानों की तो मदद कर रहा है और जो है वो काफिरों को ललकार रहा है, राइट, और जो है वो उसने जो है वो टैंक तबाह भी कर दिए थे, राइट, वीडियो बनाई, वीडियो ऐसी ऐसी वीडियोस जो है वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं जो कि कंप्लीटली फेक होती है, कंप्लीटली फेक टेक्नोलॉजी के जरिए से। एक तो हम हैरान रह गए, मैं एक वीडियो जो है ना मुझे किसी दोस्त ने दिखाई, आपने भी शायद देखी होगी, वो रोबोट्स जो है ना वो लड़ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, और जो है वो उनके जो क्या कहते हैं रोबोट्स के गालिबन जो 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 बनाने वाले लोग हैं वो उनके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन रोबोट अपने जो वो है कंस्ट्रक्ट जो 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 आर्किटेक्ट्स हैं उनको नहीं मारता, और जो है वो किसी दूसरे बंदे को मारता था। यानी इतना हैरान कुन किस्म की वो वीडियो थी, और हम उसको बिल्कुल सच समझ करके सबको दिखा रहे हैं कि देखो कितनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, यानी रोबोटिक्स ने कितनी तरक्की कर ली है। हम ये इस उनवान इस लेबल के तहत लोगों को दिखा रहे थे, और कई सालों से दिखा रहे थे, ये कोई 2018 वगैरह की शायद ये वीडियो है, ठीक है। हमारे एक दोस्त हैं जिनका कि ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक है, ज्यादा जो है ना वो इन चीजों की का इल्म रखते हैं, उनको जब हमने दिखाई ना वो वाली वीडियो, कि जिसको देख करके हमें दूर दूर तक वहमो गुमान भी नहीं हुआ था कि ये फेक हो सकती है, क्योंकि इतना कुछ उसके अंदर है कि वो फेक बन ही नहीं सकता। हमारे दोस्त ने कहा हम इसको चेक कर चुके हैं, ये फेक है, ये वीडियो फेक है। वैसी वीडियो जिसको देख करके किसी को वहमो गुमान भी नहीं हो सकता कि वो फेक वीडियो है, वो भी उन अब हमें उनके ऊपर अच्छा खासा एतबार है क्योंकि उनका है माशाल्लाह टेक्नोलॉजी के साथ इतना गहरा ताल्लुक, तो वो भी फेक वीडियो निकली। तो ऐसी वीडियोस जो कि देख करके एक छोटा बच्चा भी उसको फेक समझ सकता है, थोड़ा सा अगर गौर से देखे, थोड़ा सा अगर उसके ऊपर क्वेश्चन करे तो साफ पता चल जाता है कि वो वीडियोस फेक हैं। तो उन वीडियोस की बिना पर जो है ना वो यानी अजीब व गरीब किस्म का कि ये अकीदे की बात मत करो भाई, देखो काफिरों को शिकस्त हो रही है, काफिर मर रहे हैं, काफिर खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस दौर इस जमाने से हम गुजर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। ठीक है ना, ये डीप फेक वीडियोस तो अभी आनी शुरू हुई है ना अवाम के सामने, वैसे तो पहले से मौजूद थी लेकिन अवाम के सामने इनका पोल जो है वो अभी रिसेंटली खुला है। लेकिन हमारे हजरत ने कई साल पहले जो है वो जब दज्जाल और इमाम मेहदी के मौजू के ऊपर एक बयान किया था, उसी वक्त फरमा दिया था कि ये सारा टेक्नोलॉजी का खेल होगा, दज्जाल के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी होगी, सुपीरियर टेक्नोलॉजी। और एग्जैक्टली इस वक्त हम अपनी नजरों से देख रहे हैं ऐसा ही मामला है, और उसके ऊपर जो है ना वो आमन्ना सदकना कह करके कहते हैं कि जी अकीदे की बात मत करो, उम्मत में तफर्रका मत डालो अकीदे की बात करके। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या तुम्हारी समझ है, क्या तुम्हारा यानी है, क्या मसला किया तुम्हारे साथ। ठीक है, तो खत्म नबुवत का जो मसला जो है ना, ये इसका ताल्लुक ही इस यानी इल्हाद के साथ है, मुनाफिकत के साथ है। कभी कोई काफिर जो है वो नबी होने का दावा नहीं करेगा मुसलमानों के सामने आकर के। ठीक है, तो अगला फिर जो इसका उनवान है वो है मोमिन और काफिर की तारीफ और कुफर की अकसाम। ये हमने पढ़नी शुरू कर दी थी पिछले यानी जुमे के बयान के अंदर, और हम जो है वो पेज नंबर 22 के ऊपर पहुंच गए थे। नहीं, हाँ ये हाँ तक मैंने निशान नहीं लगाया था, नहीं फिर 22 तक ही पहुंच गए, बल्कि हमने सिर्फ तारीफात से शुरू की, बस ये पहला पैराग्राफ ही पढ़ा था। तो इसमें फरमाते हैं कि पेज नंबर 19 है ये, 19 नंबर। तो इस उनवान का अगरचे मुजमल ख्वाब का उनवान अव्वल के ज़मन में आ चुका है, लेकिन पूरी वजाहत के लिए उसकी तशरीह इस उनवान में लिखी जाती है। यानी पीछे जो है ना वो जो सूरह बकरा की इब्तदाई आयात थी, तो उनके अंदर मोमिन और काफिर और मुनाफिक, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने खुद ही बयान कर दिया अपने कुरान के अंदर, तो वहां पे हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब दोबारा जो है ना वो उसकी मुकम्मल वजाहत जो है वो एक नई हेडिंग के अंदर लिखते हैं। फरमाते हैं कि जिसका मबना वही आयात हैं जिनका जिक्र उनवान अव्वल में आया, यानी पिछली हेडिंग में, उनवान जो है वो जिसको हम अंग्रेजी में अपनी हेडिंग कहते हैं, तो उसमें बुनियाद, मबना मतलब इमारत या जिसके ऊपर बुनियाद रखी जाए, ये वही आयात कुरानी है, सूरह बकरा की इब्तदाई आयात। और चूंकि इस्लाम और कुफर की तारीफ में चंद इस्तिलाही अल्फाज का इस्तेमाल होता है, इसलिए उन अल्फाज की तारीफात पहले लिखी जाती हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे भाई हैं माशाल्लाह क्लास में मौजूद हैं, वो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, किसकी जुबान है अंग्रेजी, जन्नत की, कुरान मजीद की, नबी अलैहिस्सलाम की, जो हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं मौलवी साहब, शेख साहब, पीर साहब, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, किसकी जुबान है अंग्रेजी, जरा बताएं जल्दी से, अंग्रेजी जुबान लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सरियत जब देखी जाती है तो अंग्रेजी किसकी जुबान, काफिरों की, और बताएं, कुफार की जुबान है, और बताएं किसकी जुबान है, रहमान की जुबान क्या है, अरबी, तो अंग्रेजी किसकी जुबान है, अंग्रेजी दुनिया की जुबान है, नहीं, अंग्रेजी शैतान की जुबान। शैतान किसको कहते हैं, शैतान जो है ना वो रेबल को कहते हैं, रेबल सरकश, जो बिल्कुल बिफरा हुआ होता है, गुनाह में बिफरा हुआ, गुनाह में हद से आगे बढ़ा हुआ, उसको जो है वो शैतान कहते हैं। तो इस वक्त दुनिया के अंदर जितने शयातीन हैं ना वो सारे के सारे अंग्रेजी बोलने वाले हैं और अंग्रेजी में लिखने वाले हैं, ठीक है ना, फ्रांसीसी में भी लिखते हैं लेकिन अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी जो है वो डोमिनेंट है, फ्रांसीसी और डच और दूसरी इनकी जो जुबान है यूरोपियन, ये इतनी डोमिनेंट नहीं है जितनी अंग्रेजी है, तो ये शैतान की जुबान है। तो हम फिर अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं और अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है, ये हमने पहले सीखी और अब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और सिखलवा रहे हैं शैतान का मुकाबला करने के लिए, शैतान के दांव पेच को समझने के लिए, ठीक है ना। इसका ताल्लुक जन्नत की जुबान से, इसकी ये जन्नत की जुबान नहीं है, कुरान की जुबान नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की जुबान नहीं है, और ना ही हमारी जुबान है। हम जहाँ पे पैदा हुए, जहाँ पे हम पले बड़े हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है ना, या कोई बांग्लादेश का होगा या कोई अफगानिस्तान का होगा, अंग्रेजी किधर की जुबान है, हजारों मील दूर की जगह की जुबान है। हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हमें क्या तुक बनती है कि हम अंग्रेजी पढ़ें? अफ्रीकांस क्यों नहीं पढ़ रहे, राइट? जैम्बिया की जुबान क्यों नहीं पढ़ रहे, साउथ अफ्रीका की जुबान क्यों नहीं पढ़ रहे, श्रीलंका की जुबान क्यों नहीं पढ़ रहे, इंडोनेशिया की जुबान क्यों नहीं पढ़ रहे, बर्तानिया की जुबान क्यों पढ़ रहे? वजह है ना उसकी, ठीक है। ये नहीं कि भाई हम इतना अरसा उनके गुलामी में रहे हैं तो अब याद आती है उनकी, तो उनकी याद करने के लिए जो है ना, वो उनकी जुबान पढ़ रहे हैं, उनकी यादें नहीं, यादों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं उनकी जुबान, ठीक है, बल्कि शयातीन का मुकाबला करने के लिए उनकी जुबान पे वो सीखनी लाजमी हो गई है, इस वजह से पढ़ रहे हैं। तो अब जो क्या बात कहाँ से चली थी कि हमारे भाई जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो भी यही करते हैं कि जब पैसेज देते हैं ना कोई, या पैसेज शुरू करना है, उससे पहले जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, जो न्यू वर्ड्स होते हैं ना, तो उन वर्ड्स को जो है वो पहले समझाते हैं, क्योंकि जब तक उसके अंदर जो टर्म्स हैं, जो इस्तिलाहात हैं, वो समझ में नहीं आएंगी, तो वो पैसेज भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये कोई आज के टीचर्स ने जो है वो कोई नई टेक्निक इस्तेमाल ईजाद नहीं करी है, बल्कि ये कॉमन सेंस है। तो हमारे अकाबरीन भी यही वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो इसी वजह से अल्फाज की तारीफात पहले लिखी जाती हैं। तो तारीफात में फरमाते हैं सबसे पहले ईमान। तो ईमान क्या चीज है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बी तस्दीक, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की, खबरों की अपने दिल से तस्दीक करना, हर उस चीज में जिसका सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतई और बदीही तौर पर हो चुका हूं। कतई तौर पर, कतई कहते हैं जिसके अंदर कोई शक की गुंजाइश ना हो, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म जो चीज हो ना, और बदीही कहते हैं कि जो कि बिल्कुल जाहिर हो, बिल्कुल अपेरेंट हो, बिल्कुल ऑब्वियस हो, छुपा हुआ कोई मामला ना हो उसके अंदर, बल्कि क्लियर हो, ठीक है ना। तो जो चीजें नबी अलैहिस्सलाम से हमारे तक पहुंची हैं, जिनके बारे में हमें 100% यकीन है कि हाँ वाकई नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही कहा था, ऐसे ही बताया था, तो उसका, उसकी दिल से तस्दीक करना, बशर्ते कि उसके साथ अताअत का इकरार भी हो। दिल से तस्दीक तो कर दी, लेकिन अताअत करने का कोई इरादा नहीं किया, ठीक है, अताअत करने का इकरार नहीं किया, इरादा नहीं किया, इजहार नहीं किया, इजहार नहीं किया, इकरार नहीं किया, इरादा नहीं किया, तो ईमान नहीं हो। तो शर्त ईमान की यह है कि दिल से तस्दीक भी हो और इकरार, अताअत का इकरार भी हो, ठीक है। अब रिपीट द डेफिनेशन ऑफ ईमान तो कर देता हूं, लेकिन आपके सामने बुक होनी चाहिए ना, लेकिन किताब से पढ़ रहा हूँ तो किताब सामने होगी तो फिर आपको रिपीट नहीं करवाना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बी तस्दीक हर उस चीज में जिसका सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतई और बदीही तौर पर हो चुका हो। कतई का मतलब बिल्कुल जीरो डाउट, और बदीही का मतलब बिल्कुल अपेरेंट, बिल्कुल क्लियर, ऑब्वियस, जाहिर, ठीक है, बशर्ते कि उसके साथ अताअत का इकरार भी हो। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है, यानी एग्जाम्पल से बात ज्यादा समझ में आती है ना, हेरकल, हेराक्यूलस, जो कि रोम का उस वक्त बादशाह था, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में, नबी अलैहिस्सलाम ने उसके नाम खत लिखा था, तो उसने नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार कर लिया कि हाँ ये अल्लाह के रसूल है, और इतना ही काफी होता है कि जो कुछ लेकर के आएंगे मैं उसकी दिल से तस्दीक करता हूं, ठीक है, ये कहने की जरूरत नहीं है, बस कि मैंने मान लिया कि ये अल्लाह के रसूल है, इसका मतलब यही होता है कि मैं उसकी दिल से तस्दीक करता हूँ, जो कुछ ये लेकर के आएंगे, जो कुछ ये मुझे बताएंगे मैं उसकी दिल से तस्दीक करता हूँ। तो उसने ये कर ली थी, हेरकल ने ये कर ली थी, लेकिन अताअत का इकरार नहीं किया कि मैं आपकी अताअत में आता हूं, मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूं, आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, ये हिरकल ने नहीं किया, काफिर रहा वो, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको काफिर करार दिया कि ये मुसलमान नहीं हुआ है, ठीक है ना। रोमन एम्पायर उस जमाने का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी वो, ठीक है, तो उसने इकरार अताअत का नहीं किया था। इवन ख्वाजा अबू तालिब नबी अलैहिस्सलाम के सगे चचा, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इतनी मदद करी, इतनी मोहब्बत की और इतना सपोर्ट किया, सब कुछ किया, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम की शान में कसीदे लिखे। उन कसीदों को पढ़ते हैं तो अश अश कर जाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की कैसी जो है वो मदह सराई करी है उसके अंदर, लेकिन अताअत का इकरार नहीं किया। ठीक है, तो वो भी मुसलमान ईमान वाले नहीं कहलाए। तो ये है ईमान की तारीफ। फिर उसके बाद दूसरी इस्तेलाह है इस्लाम। तो इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी का इकरार। ठीक है, क्या मतलब कि मैं बात मानूंगा, मैं आपके हुक्म पे अमल करूंगा, इसको कहते हैं अताअत का इकरार। ठीक है, जैसे बैत करते हैं ना, जब किसी के हाथ पे जाकर के, चाहे वो सियासत वाली बैत हो, चाहे वो तौबा वाली बैत हो, तो वो यही इकरार होता है कि जी आप जो कहेंगे हम उसको मानेंगे। ठीक है, हम उसके ऊपर अमल करेंगे, मानेंगे मतलब हम उसके ऊपर अमल करेंगे आपके हुक्म के ऊपर। ठीक है, तो इस्लाम क्या है? अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी का इकरार, बशर्ते के उसके साथ ईमान यानी तस्दीक कल्बी भी। सिर्फ ऊपर से इकरार करेगा, तस्दीक कल्बी नहीं मौजूद होगी, दिल से उसका इकरार नहीं किया। ठीक है, तस्दीकों बिलकल्ब नहीं किया तो ये मुसलमान नहीं होगा, ये इस्लाम लाने वाला नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई इस्लाम की तारीफ। तो देखें, ये जो बशर्ते के है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि बशर्ते के से पहले वाला जो पार्ट है ये तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन इस शर्त के साथ तब मुकम्मल होता है। ठीक है, क्या फरमा रहे हैं कि हम भी इकरार तो करते हैं, अमल में सुन्नत नहीं होती, अमल में सुन्नत नहीं होती ना, लेकिन आपने जो है वो सुन्नत का इनकार को तो नहीं किया है ना। ठीक है, सुन्नत का इकरार तो किया है ना, कि हाँ सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम के का तरीका है और वही सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अमल में सुन्नत नहीं होती, इससे जो है इंसान काफिर नहीं हो रहा था, इससे इंसान जो है वो गुनाहगार होता है। ठीक है, उसका ईमान कमजोर हो जाता है लेकिन खत्म नहीं हो जाता सुन्नत पे अमल ना करने से। तो इकरार करना एक अलग चीज होती है, अमल करना जो है ना ये एक अलग चीज होती है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि इकरार ही नहीं करते वो। सही, अच्छा, कुफर क्या है? कि जिन उमूर की तस्दीक ईमान में जरूरी है उनमें से किसी अमर की तकजीब व इनकार करना। ठीक है, उसको डिनाई करना, उसको उसको जो है वो यानी रिजेक्ट करना या डिनाई करना। ठीक है, किस चीज को डिनाई करना? जिन उमूर की, जिन बातों की, जिन मैटर्स की तस्दीक करना ईमान के लिए जरूरी है। वो कौन से वाले थे जिनकी तस्दीक करना ईमान के लिए जरूरी है? ईमान की तारीफ के अंदर लिखा हुआ है कि वो चीजें जिनका सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतई और बदीही तौर पर साबित हो चुका है। ठीक है, कतई और बदीही तौर पर साबित हो चुका है, तो उनमें से किसी एक चीज का इनकार कर देना ये कुफर है। ठीक है, उनमें से किसी एक अमर का इनकार, यहाँ पे एक का लफ्ज लिखा हुआ नहीं है किताब में, लेकिन आप उसको विदाउट प्रॉब्लम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, किसी एक अमर का की तकदीब और इनकार कर। ठीक है, क्या पूछा आपने कि इसका मतलब है कि ईमान और इस्लाम लाजिम व मलजूम हुए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इस्लाम और ईमान लाजिम मलजूम हुए, एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दूसरा पहले के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आगे ये भी आएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मोमिन की तारीफ। तो मोमिन यानी ईमान वाला वो कौन है? वो शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से तस्दीक करे हर उस अमर में जिसका सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतई और बदीही तौर पर हो चुका हो, बशर्ते के जुबान से भी उस तस्दीक का और अताअत का इकरार करे। ठीक है, दिल से भी तस्दीक करे हर उस चीज का जो कि कतई और बदीही तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हुई साबित है। ठीक है, बहुत सारी हदीसें ऐसी होती हैं कि जो कि कतईयत को साबित नहीं करती, तो उनमें से किसी ऐसी हदीस का इनकार कर दिया कि नहीं ये तो मैं इसका इकरार नहीं करता, इस इंसान काफिर नहीं होता, क्योंकि वो कतई और बदी ही नहीं है। ठीक है, तो जो हदीसें मुतवातिर होती हैं और जो हदीसें मशहूर होती हैं ना, बल्कि मुतवातिर, जो हदीसें मुतवातिर होती हैं वो हैं कतई और बदीही। उनमें से किसी एक का भी इनकार कर देना जो है ना, इंसान को काफिर बना देता है। ठीक है, ये तफसीलात आगे इंशाल्लाह आएंगी, अभी तो खाली जो है वो तारीफात चल रही हैं इन टर्म्स की। अच्छा, मोमिन कौन है? वो शख्स जो अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमानबरदारी का इकरार करे, बशर्ते के दिल में भी उसकी उनकी तस्दीक रखता। शर्त क्या है? दिल में भी तस्दीक रखता, सिर्फ ऊपर से इनकार इकरार न करता बल्कि दिल में भी तस्दीक रखता। और काफिर क्या है? वो शख्स जो उनमें से किसी एक चीज का दिल से इनकार कर दे या जुबान से तकजीब कर दे। अगर दिल से इनकार कर देगा, जुबान से तकजीब नहीं करेगा, अल्लाह ताला दिलों का हाल जानते हैं। और हिसाब किसने करना है? अल्लाह ने करना है। जन्नत जहन्नुम का फैसला किसने करना है? अल्लाह ने करना है। तो अल्लाह ताला को पता चल गया कि ये काफिर हो चुका है। ठीक है ना, इंसानों को कब पता चलेगा? जब ये जुबान से भी इकरार करेगा तो इंसानों को भी पता चल जाएगा। तो इंसान जो है वो दुनिया के अंदर फिर उसके साथ काफिरों वाला मामला करेंगे। ठीक है, और जब तक इंसानों को पता नहीं चलेगा तो दुनिया में उसके साथ काफिरों वाला मामला नहीं करेंगे बल्कि मुसलमान वाला मामला करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता चल जाएगा। तो बस ये बस वही हो गया कि पहले जो है वो फेल की डेफिनेशन आ गई, ठीक है, और अब जो है वो फाइल की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ईमान वाला फेल जो है उसके फाइल को मोमिन कहते हैं, इस्लाम वाला फेल के फाइल को मुस्लिम कहते हैं, और कुफर वाले फेल के फाइल को काफिर कहते हैं, डूअर। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद इस्लाम व ईमान और मुस्लिम व मोमिन में फर्क क्या है फिर? तो वैसे तो तारीफ से जो है वो फर्क जाहिर है। ठीक है, कि अब आगे आ रहे हैं वैसे इंशाल्लाह, तो हम इधर इबारत नहीं पढ़ लेते हैं। तो मतलब वाई टू वर्ड्स देन, जब कोई फर्क नहीं है तो वाई टू वर्ड्स, फर्क तो खैर है, तारीफ के अंदर ही फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, सेम तारीफ तो नहीं है दोनों की, मोमिन की और मुस्लिम की, फर्क तो है ना तारीफ के अंदर ही। बाकी ये कि क्यों फिर रखा ही क्यों दो अल्फाज जब एक से ही काम चल सकता था। तो आगे फरमाते हैं कि लफ्ज ईमान, आगे देखें तो से तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी कि अल्लाह ताला ने दो लफ्ज रखे ही क्यों। ठीक है, तो कहते हैं कि लुगतन ईमान तस्दीक कल्बी का नाम है और इस्लाम अताअत व फरमाबरदारी का नाम है। ठीक है, लुगतन यानी डिक्शनरी के अंदर, अरबी डिक्शनरी के अंदर तस्दीक कल्बी, ईमान के, ईमान की असलाही तारीफ डिक्शनरी के अंदर जो लिखी होगी ना वो होगी तस्दीक कल्बी, और इस्लाम की होगी अताअत व फरमाबरदारी। ईमान का महल कल्ब है, यानी ईमान कहाँ पर होता है? कल्ब में होता है, जो कि हमारी रूह का दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी है हमारी रूह का कल्ब। ठीक है, फोकल पॉइंट रूह का जो है वो कल्ब है। सही है, कैपिटल सिटी कह दें, दारुल हुकूमत कह दें, फोकल पॉइंट कह दें, कुछ भी कहें, इसके इसके नाम रखें, तो वहां पर ईमान होता है। और इस्लाम का महल कल्ब, कल्बे आज़ा व जवारे। अच्छा, महल कल्ब, या तो कल्ब का लफ्ज जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, या ये कि कल्बे आज़ा व जवारे। ठीक है, यानी आज़ा और जवारे जो है ना वो उनके ऊपर आपको इस्लाम नजर आ। ठीक है, यानी हाथ से जो काम करता है, पैर से जो काम करता है, आंखों से जो काम करता है, नाक से, और जो है वो यानी ये सारे जो आज़ा और जवारे कहलाते हैं। आज़ा मतलब उज़्व की जमा आज़ा, और जवारह जो है वो जो के साइड्स में जो हमारे साथ चीजें लगी हुई है ना ऊपर ऊपर बॉडी के ऊपर। तो इस्लाम जो है वो, यानी इस्लाम जो है वो इंसान की बॉडी के ऊपर नजर आता है, और ईमान जो है ना वो बॉडी के ऊपर नजर नहीं आता। यानी ये कोई अफ़आल का नाम नहीं है ईमान, ठीक है, बल्कि ये दिल की एक सोच का नाम है, दिल की एक जो है ना वो यानी नीयत का नाम है ये। ठीक है, अच्छा, लेकिन शरअन ईमान बगैर इस्लाम के और इस्लाम बगैर ईमान के मोतबर नहीं है। शरअन का मतलब क्या? कि जो इस्लाम का लीगल सिस्टम है, शरीयत जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर जो है ना, यानी ये नहीं हो सकता कि कोई शख्स कहे कि मैं ईमान वाला हूं अगरचे कि मुसलमान नहीं हूं, तो आप जो है ना मुझे क्या कहते हैं अपनी बेटी जो है वो निकाह में दे दें, मैं मुसलमान नहीं हूं लेकिन मैं मोमिन हूं, तो आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो आप क्यों नहीं दे रहे मुझे अपनी बेटी निकाह में? आप कहेंगे कि भाई ये कौन सी नई चीज लेकर के आए हो, जो मोमिन होता है उसका मुस्लिम होना जरूरी है, ठीक है ना? तो दोनों हो गए तब मैं तुम्हें बेटी निकाह में दूंगा, वरना नहीं दूंगा, ठीक है? तो शरीयत में ये नहीं हो सकता कि जी किसी मोमिन साहब से जो है वो बेटी का निकाह हो जाए तो फिर वो निकाह जो है वो हो जाएगा, नहीं, निकाह होगा ही नहीं, क्योंकि मुसलमान औरत जो है वो काफिर के निकाह में नहीं जा सकती। और ये जो साहब आकर के क्लेम कर रहे हैं कि मोमिन है ना लेकिन मुस्लिम नहीं है, ये मोमिन भी नहीं है, हम इनको मोमिन भी नहीं मानने के लिए तैयार है, तो काफिर के साथ जो है वो बच्चे का निकाह ही नहीं हो सकता, मुसलमान बच्चे का, शरीयत में इसकी इजाजत ही नहीं है। तो ये मतलब हुआ कि शरअन ईमान बगैर इस्लाम के और इस्लाम बगैर ईमान के मोतबर नहीं है। कोई शख्स कहे कि मैं इस्लाम मुसलमान तो हो गया हूँ, मोमिन बाद में हो जाऊंगा, मोमिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि मोमिन भी बनना है कि नहीं बनना है। हम बचपन में थे ना तो वो शिया कहते थे हम मोमिन है, सुन्नी वो कहते थे वो मोमिन नहीं है। अभी एक आंटी भी बता रही थी घर वालों को कि ईरान में जॉब वॉब के लिए गई थी, उनके उनके हस्बैंड गए थे जॉब के लिए, तो वहां पे ना उन्होंने फॉर्म भरवाया कि भैया आप मोमिन हैं कि आप जो है वो सुन्नी है, ठीक है? तो बचपन से जो हम मजाक में सुनते थे तो उन्होंने बताया कि ईरान में बकायदा फॉर्म में यही लिखा हुआ कि आप मोमिन हैं कि आप सुन्नी है, यानी आप सुन्नी और मोमिन एक साथ नहीं हो सकते। बहरहाल, तो शरान ईमान बगैर इस्लाम के और इस्लाम बगैर ईमान के मोतबर नहीं है, यानी अल्लाह उसके रसूल की महज दिल में तस्दीक कर लेना शरअन उस वक्त तक मोतबर नहीं जब तक जुबान से उस तस्दीक का इजहार और अतात व फरमानबरदारी का इकरार न करे। क्या लिखा? इस्लाम बगैर ईमान के मुनाफिकत कहलाएगा। जी, उसी को मुनाफिकत कहते हैं, ठीक है? जो कि असल में कुफर ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको एक अलग कैटेगरी में रखा है, तो इस वजह से उसको हम भी अलग कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। कैन अ पर्सन बी मुस्लिम विदाउट बीइंग अ मोमिन? वो फिर वो मुनाफिक होता है। कैन नॉट बी अ मुस्लिम विदाउट बीइंग अ मोमिन। अच्छा, तो कहते हैं कि अतात व फरमाबरदारी का इकरार उस वक्त तक मोतबर नहीं जब तक उसके साथ दिल में अल्लाह उसके रसूल की तस्दीक ना हो, ठीक है? अब जो है ना मसला यहाँ पर यह है कि अगर जो है ना हमारे अंदर एक बेसिक लेवल ऑफ अकल ना हो, या हो तो लेकिन हम इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, पे अटेंशन करने के लिए तैयार नहीं है, तवज्जो से बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जो एक पैराग्राफ है ना, ये अच्छे खासे बंदे को अच्छा खासा, अच्छे खासे बंदे को नहीं बल्कि बंदे को अच्छा खासा चकरा देने के लिए काफी है, ठीक है ना? चकरा देने के लिए ये एक पैराग्राफ काफी है, लेकिन किसको चकरा देने के लिए काफी है? जो कि पे अटेंशन ना कर रहा हो, जो कि तवज्जो से बात ना सुन रहा हो, ठीक है ना? व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर इधर से मैसेजेस भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, इधर भी जो है वो विंडो शेयरिंग करी हुई है, उधर भी जो है वो कोई बात हो रही है, इधर भी जो है वो अपना काम चल रहा है, तो अब ऐसे इस पैराग्राफ को सुनेंगे तो चक्कर ही आएंगे फिर उसके बाद, ठीक है? लेकिन अगर तवज्जो से बात सुनेंगे तो फिर इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, ये तो हमारे दीन की सबसे बेसिक डिस्कशन है कि नहीं? यहाँ पे हम आपको वुजू का तरीका तो नहीं सिखा रहे, यहाँ पे हम आपको नमाज का तरीका तो नहीं सिखा रहे, यहाँ पे आपको जकात के मसाइल तो नहीं बता रहे, ठीक है ना? तो ज़कात के मसाइल, नमाज का तरीका, और वो तो उसको समझने के लिए आपको कितनी ज़्यादा अकल चाहिए होती है? बहुत आसान सी चीज़ होती है ना। हाँ, ज़कात के लिए कुछ कैलकुलेशंस वगैरह, उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स वगैरह की जरूरत पड़ती है ज़कात के लिए, वो भी, ठीक है? यहाँ पर तो बिल्कुल बेसिक है ये हमारे दीन की। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इवन द मोस्ट बेसिक ऑफ द थिंग्स इन आवर दीन रिक्वायर अकल, अटेंशन, तवज्जो, ठीक है ना? वरना तो ये बुनियादी समझ में नहीं आए कि मोमिन, एक बंदा मोमिन है, मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम है मोमिन नहीं है, लेकिन साथ साथ दोनों अलग अलग चीजें भी हैं, ये कैसे भाई, ठीक है ना? तो अकल जो है ना ये बड़ी के भैंस, ठीक है? तो है, जाहिर सी बात है भैंस बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन अकल अल्लाह ताला ने ऐसी दी है कि भैंस को भी काबू कर लेती है, बड़ी तो भैंस ही होती है, ठीक है, लेकिन अकल भैंस को भी काबू कर लेती है। तो इस वजह से जो है ना, वो दीन के साथ अकल का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इवन आप बुनियाद भी जो है ना, वो दीन की अकल इस्तेमाल किए बगैर नहीं समझ सकते। और इतनी अकल जो है वो अल्लाह ताला ने किसान को भी दी है, मोची को भी दी है, बढ़ई को भी दी है, और कंप्यूटर साइंटिस्ट को भी दी है, और पीएचडी करने वाले इंजीनियर को भी दी है। तो अल्लाह ताला को ज्यादा पता है ना कि कितनी जरूरत थी और कितनी एडिशनल थी, अल्लाह ने दी भी है। इसी वजह से फिर बंदे का हिसाब भी उस नियमत की बकदर ही होता है जो अल्लाह ताला ने उसको दी हुई होती है। बहरा, तो अब इस मजीद आगे फरमाते हैं कि अल-गर्ज़, यानी गर्ज ये है कि लुगवी मफहूम के एतबार से ईमान व इस्लाम अलग अलग मफहूम रखते हैं, ठीक है। डिक्शनरी डेफिनेशंस के हिसाब से दोनों अल्फाज जो है ना, वो अलग अलग मीनिंग अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, और कुरान और हदीस में इसी लुगवी मफहूम की बिना पर इस्लाम और ईमान के इख्तलाफ का जिक्र भी है, ठीक है। लेकिन खुद कुरान और हदीस की ही तसरीहात के मुताबिक ये भी मालूम होता है कि शरअन कोई ईमान बिदून इस्लाम के या इस्लाम बिदून ईमान के मुतबर नहीं। दोनों अलग अलग चीजें बेशक हैं, लेकिन दोनों का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर पानी, अभी बच्चों को हमने वाटर के ऊपर बड़े लंबे लंबे लेक्चर्स पढ़ाए हैं, ठीक है ना। वजअलना मिनस समाई मान तहूरा, और क्या था जी बच्चों, वो जो बिल्कुल बुनियादी आयत के अफला युमिनून वाली, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय अफला युमिनून, हमने हर चीज जो जिंदगी रखती है ना, वो हमने पानी से पैदा करी, क्या तुम इस बात पर ईमान नहीं लेकर के आते, ठीक है, क्या तुम ईमान वाले नहीं हो, ठीक है। तो ऐसी बुनियादी चीज पानी, ठीक है ना, जिससे कि अल्लाह ताला ने हर चीज को जिंदगी बख्शी है, और पानी जिस जो के इस प्लैनेट अर्थ का भी 1/4 से 3/4 पानी है, और हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का जो है वो 70% से ज्यादा जो है वो पानी है। ये पानी जो है ना, ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के मिले बगैर, और सॉरी, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन और दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन H2, जब ये दोनों चीजें मिलेंगी और इस प्रोपोर्शन में मिलेंगी तब ये पानी बनेगा, वरना पानी नहीं बनेगा। अब आप कहें इतनी बुनियादी चीज है भाई, तो खाली एक हाइड्रोजन का एटम ही जो है वो पानी बना देता। इतनी बुनियादी चीज है भाई, जिसपे हर चीज का दारोमदार है, पूरी जिंदगी अल्लाह ताला ने पानी से बनाई है, तो खाली ऑक्सीजन के एक एटम से जो है पानी बन जाता। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, कर लो जो करना है, कौन है खुदा, मैं तो कि तुम, राइट, कौन खुदा है, मैं खुदा हूँ ना अल्लाह ताला की तरफ से, भाई मैं कहता हूँ H2O से पानी बनेगा वरना नहीं बनेगा। अब हम कहते हैं, अब हम आगे से एतराज करें, इतना बुनियादी चीज थी तो अल्लाह आपने क्यों बनाया इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्यों बनाया आपने पानी का, ठीक है ना। अल्लाह ताला कहेंगे कौन है भाई, तुम खुदा हो कि मैं खुदा हूं, खुदा बनने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। तो यहां पर भी ईमान को भी अल्लाह ताला ने बुनियादी चीज बनाया, लेकिन दोनों चीजों का, इधर से भी आएंगे एटम्स, उधर से भी एटम्स आएंगे, इस्लाम के एटम भी होने चाहिए और ईमान के एटम भी होने चाहिए, तस्दीक कल्ब भी होनी चाहिए, इकरार यानी इनकियादे जाहिरी भी होनी चाहिए, दोनों मिलेंगे तब ईमान बनेगा, चाहे कितनी बुनियादी चीज क्यों ना हो, चाहे कितनी जन्नत के लिए जरूरी क्यों ना हो, ना अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते ना, हु इज द गॉड हियर, आई एम द गॉड हियर, आई डिसाइड, नॉट यू, तुम तो बंदे हो और गंदे हो, ठीक है ना, तुम तो बंदे हो, सरासर गंदे हो, मेरी बात मानोगे तब अच्छे बनोगे वरना नहीं बनोगे, ठीक है। तो है बुनियादी चीज, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको ऐसे ही रखा है भाई, हमारी बंदगी के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह ताला के सामने सारे तस्लीम खम कर दें। तो फरमाते हैं कि जी ना ईमान बिदून इस्लाम के, ना इस्लाम बिदून ईमान के मुतबर। इसी मजमून को बाज अहले तहकीक ने इस तरह बयान फरमाया है, बाज अहले तहकीक यानी जो बहुत तहकीक में जाते हैं और ज्यादा जो है ना, वो मतलब माशाल्लाह उलूम के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो फिर वो एक्सपर्ट्स क्यों बनते हैं, तहकीक में जाने की वजह से बनते हैं, हमारी तरह सुपरफिशियली अगर कोई चीज पढ़ेंगे तो फिर एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते। तो जो अहले तहकीक होते हैं तो फिर वो बात की खाल निकालते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं होती उनके लिए, क्योंकि दिस इज देयर जॉब, ये उनकी जॉब होती है, तहकीक में है ही बात की खाल निकालना, ठीक है। तो इसी मजमून को फिर बाज़ अहले तहकीक ने इस तरह से बयान फरमाया है कि ईमान व इस्लाम की मुसाफत तो एक है, यानी दोनों एक साथ जो है वो सफर तय करते हैं, फर्क मबदा और मुंतहा में है, ठीक है। मबदा यानी बिगिनिंग लोकेशन, बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और मुंतहा यानी जो फिनिशिंग पॉइंट है। तो इसमें जो है वो दोनों में फर्क है। ईमान कल्ब से शुरू होता है और जाहिर पर मुंतहा होता है, ठीक है। कल्ब से शुरू होता है यानी तस्दीक जो है ना किसी बात की, आप जो तस्दीक करते हैं वो जुबान से शुरू नहीं होती, वो इब्तिदा उसकी जुबान से नहीं होती, इब्तिदा तो अंदर से होती है, और इंतहा जो है वो जुबान पे आकर के होती है कि आप जुबान से भी उसका इकरार करते हैं, ठीक है। और इस्लाम जो है ना वो जाहिर से शुरू होकर कल्ब पर मुंतही होता है, ठीक है। तो इस्लाम को अगर आप इस तरह से देखें कि भाई सबमिशन, अपने आप को झुका देना कि हाँ भाई मैं आपकी बात मानूंगा, आप मेरे बड़े हैं, आप जो फरमाएंगे मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है ना, ये आपने इकरार कर लिया जुबान से, लेकिन आप मुसलमान सही मानों में असल मुसलमान उसी वक्त बनेंगे जब दिल से तस्दीक भी हो रही हो, ठीक है। तो इस्लाम जो है वो जाहिर से शुरू होकर कल्ब पे खत्म होता है, और ईमान कल्ब से शुरू होकर के जाहिर पे खत्म होता है। अगर कल्बी तस्दीक जाहिरी इकरार वगैरह तक ना पहुंचे तो वो तस्दीक ईमान मोतबरी नहीं, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह जाहिरी इकरार व अतात अगर तस्दीक कल्बी तक ना पहुंचे तो वो इस्लाम मोतबर नहीं, ठीक है। यानी ना तो शरीयत इस्लामिया के अंदर उसको मोतबर समझा जाएगा, दुनियावी वर्ल्ड सिस्टम्स के अंदर उसको मोतबर नहीं समझा जाएगा, ना अल्लाह ताला के यहाँ उसको मोतबर समझा जाएगा, ठीक है। तो ये तहकीक जो है वो किसकी है, हजरत अल उस्ताद अल अल्लामा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की, ठीक है। तो इसी का जो है ना वो फिर हमें कुरान मजीद के अंदर जो इससे रिलेटेड इस वाली बात से कि ईमान जो है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, इस्लाम कहाँ से शुरू, कहाँ पे खत्म होता है, कुरान मजीद की जो आयत है जहाँ पर के उस वाकये का जिक्र है कि कुछ आराबी जो है ना नबी अलैहिस्सलाम के पास आए थे बोलते हुए कि हम ईमान ले आए, हम ईमान ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो कि दिलों का हाल जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल फरमाई कि कालतिल आराबु आमन्ना, आराब आराबी लोग, ये वाले आराबी लोग आपके पास आकर के कहते हैं कि आमन्ना, हम ईमान लेकर के आ गए। कुल कह दीजिए इनसे, लम तो मिनू, तुम अभी ईमान लेकर के नहीं आए हो, वलाकिन लेकिन कूलू, तुम ये कह सकते हो असलमना, हम जो है वो सुपुर्द करते हैं अपने आप, हम आपकी अताअत जो है वो अपने ऊपर लाजिम कर रहे हैं, असलमना, ठीक है। वलाकिन कूलू असलमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान अभी तुम्हारे कुलूब के अंदर दाखिल नहीं हुआ है, अभी तुमने जुबान से इकरार किया है और आजारो जवारे से अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया है, चल करके आए हो, हाथ से भी शायद कुछ जेस्चर्स कर रहे होगे कि वी आर सबमिटिंग टू यू, जुबान से तो तुम कह ही रहे हो कि हम जो है वो आ गए हैं आपके सामने, हवाले कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन अभी तुम्हारे दिल के अंदर ईमान नहीं आया है, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है ये वाला वाकया कि जाहिर से शुरू होता है फिर जो है वो कल्ब के अंदर जान बचीन होता है, ठीक है। सूरह हुजरात जवाब ये आयत है, ठीक है। टाइम जो है वो मुकम्मल हो चुका है क्लास का, तो बस ये एक मैसेज जो किसी ने डायरेक्ट मैसेज में लिखा है उसको पढ़ के फिर उसको कंक्लूड करते हैं कि लिखा है इन्होंने कि मोमिन का और मुसलमान का दर्जा एक ही है, यानी ईमान तस्दीक के बाद अताअत करने से, यानी ईमान के बाद अताअत करने से बंदा मोमिन बनता है, या तस्दीक और इकरार करने से भी मोमिन होता है। ईमान के बाद अताअत करने से बंदा मोमिन बनता है। देखें, सवाल तो माशाल्लाह अच्छे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप बात समझने की, लेकिन कुछ जो है ना वो अल्फाज को आप जो है वो मिस कर रहे हैं, इस वजह से आप ये वाला सवाल कर रहे हैं। अल्फाज के ऊपर बड़ा गौर करने की जरूरत होती है, क्योंकि है जरा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बज़ाहिर वैसे है नहीं, लेकिन बज़ाहिर जो है थोड़ा लफाजी वगैरह इसके अंदर है ना, इस वजह से ना डोंट इग्नोर और डोंट ओवरलुक द वर्ड इकरार, इकरार करना अताअत का, ये है इसकी तारीफ के अंदर। ठीक है, अताअत करना नहीं, अताअत का इकरार करना, यह है ईमान की शर्त। आप जो सवाल कर रहे हैं ना, वो है अताअत करना, नहीं अताअत करने की बात नहीं हो रही इधर। ईमान की तारीफ के अंदर क्या है कि तस्दीक, कल्ब से तस्दीक करना और अताअत का इकरार करना। अताअत करना तो बाद में शुरू होगा, अभी तो अताअत के इकरार की बात हो रही है। ठीक है, तो अल्फाज कितने अहम होते हैं ना, जब भी तो हजरत जो है वो बात समझाने से पहले अल्फाज की डेफिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आप अल्फाज जो है वो अगर हम मिस कर जाते हैं तो फिर बात हमारे जहन में अधूरी रह जाती है। ठीक है, चले बहरहाल फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे टाइम लगता है चीज़ों को अच्छी तरीके से इंटरनलाइज करने में और समझने में। एनीवे, क्या लिखा है उन्होंने एक और, कि दीज पीपल हु जस्ट बिकेम मुस्लिम विदाउट ईमान एंटरिंग द हार्ट, इफ दे डाई इन दिस स्टेट विल दे डाई मुस्लिम, इफ दे डाई इन दिस स्टेट विल दे डाई मुस्लिम। भाई जब अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में कह दिया वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, ठीक है, तो अब अल्लाह ताला ने तो फिर उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया ना कि अभी ईमान तुम्हारे कुलूब के अंदर दाखिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर अगर अगर वो मर जाते, वैसे तो कोई ऐसा हदीस में नहीं आता है कि उनमें से कोई मर भी गया उस हालत में, लेकिन अगर वो मर जाते तो अल्लाह ताला तो पहले से स्टैंप लगा चुके हैं कि तुम्हारा दिल में तो ईमान दाखिल ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर बगैर ईमान के फिर दुनिया से चले गए ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने यही तो कहा है कि वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम। बहरहाल तो जिसका भी यही मामला होगा कि हाँ जुबान से तो वो इकरार कर रहा है लेकिन दिल से उसने तस्दीक करी ही नहीं है, दिल से तो वो कह रहा है नहीं जीसस क्राइस्ट वाला मामला ज्यादा अच्छा था, ठीक है ना, वो ज्यादा मुझे मजा आता था चर्च में, और फिर वहां पे वो एक साहब थे हमारे पास इस तरह के ना, ब्रूस नाम था उसका, बड़ी अच्छी जो है वो, लेकिन मुसलमान हो गया था, कलमा पढ़ लिया था उसने, ठीक है, और नमाजें भी पढ़ता था आकर के, और ऐसी जो खुशू खुजू वाली नमाजें पढ़ता था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया था। ठीक है, एक दिन मुझे फोन करके कहता है कि मैं जा रहा था उस पर लंबी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा था, वो फोन करके मुझे कहता है कि ब्रदर काशिफ आई जस्ट रेड इन द कुरान दैट जीसस नेवर डाइड ऑन द क्रॉस, जीसस नेवर डाइड ऑन द क्रॉस। तो कहता है कि आई एम हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एक्नॉलेजिंग दिस, एक्सेप्टिंग दिस, क्योंकि मेरा जो है ना वो सारी बुनियादी इस पर थी कि जीसस जो है ना वो ही डाइड ऑन द क्रॉस, जीसस जो है वो सलीब के ऊपर जो है वो उसने जान उन्होंने जान दी है, और यही जो है वो, अब वो मुसलमान हो गया था क्या मतलब, नमाजें पढ़ता था अगर, कलमा पढ़ता था, बयानात के अंदर बैठता था, गोरा अमरीकी, ठीक है, लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। आप यकीन करें मैं हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरा खून जो है ना वो किसी ने निकाल लिया पूरी जिस्म के अंदर से, और पैरों तले जमीन तो थी भी नहीं, गाड़ी के वो थे क्लच और गियर वगैरह थे, लग रहा था पैरों तले जमीन खिसक गई है मेरे, ये हाल हुआ था उसकी बात ये सुनकर के, और उसके बाद वो वापस नहीं आया। आज मुझे याद आता है, अल्लाह ताला ने उसको बाद में हिदायत दे दी, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाज़त फरमाए। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।